जय राधा माधव बिहारी। राधा माधव बिहारी। गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। बड़ा विशेष अनुभव है कि पूरे मंदिर हॉल में केवल तीन ही भक्त हैं। मैं अगर मैं अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करता हूँ कि ये तीन भक्तों में श्रीमान आचार्य रत्न प्रभु हैं, इसलिए उनके सामने कुछ कृष्ण कथा कहने का जब प्रयास कर रहा हूँ तो इतना तो विश्वास है कि अगर कुछ गलती भी हो जाए तो प्रभु जी मुझे सुधार लेंगे और मेरी सुरक्षा करेंगे। सभी वैष्णवों के चरण कमलों में आशीर्वाद की याचना करता हूँ, विशेष करके श्रीमान राधेश्याम प्रभु। उन्होंने जो प्रचार का ये विशेष उत्साह और प्रेरणा अपने आदर्श उदाहरण से प्रस्थापित किया है, उससे ही हम कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। पांचवा स्कंद अध्याय क्रमांक 1 श्लोक संख्या 7। ये गद्य होने के कारण मैं ही उसका केवल पढ़ लूँगा, उसका अनुमोदन करना या गाना थोड़ा मुश्किल है। अतः भगवान आदि देव एतस्य गुण विसर्गस्य परिब्रूहाणानुध्यान व्यवस्थित सकल जगद अभिप्राय आत्मयोनीर अखिल निगम निजगण परिवेष्टित स्वभवनाद अवततार। शब्दानुशब्दवाद शब्दानुशब्द अनुवाद पढ़ेंगे। अथ इस प्रकार ह निस्संदेह भगवान सर्वशक्तिमान आदिदेव प्रथम देवता एतस्य इस ब्रह्मांड की गुण विसर्गस्य तीनों गुणों की उत्पत्ति परिब्रह्मण कल्याण अनुध्यान सदैव ध्यानमग्न व्यवसित ज्ञात सकल संपूर्ण जगत ब्रह्मांड का अभिप्राय परम उद्देश्य आत्मा परमात्मा योनि जिसके जन्म का स्रोत अखिला संपूर्ण निगमा वेदों के द्वारा निजगण अपने गणों सहयोगियों से परिवेष्टिता घिरे हुए स्वभवनात् अपने धाम से अवततार नीचे आए। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभयचरणा रविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की। अनुवाद श्री शुकदेव गोस्वामी आगे बोले, इस ब्रह्मांड के आदि जीव एवं सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी है, जो इस सृष्टि की समस्त गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी है। भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे सृष्टि का उद्देश्य जानते हैं। ऐसे परम शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जी अपने पार्षदों तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहाँ राजकुमार प्रियव्रत ध्यान कर रहे थे। तात्पर्य, जैसा कि वेदांत सूत्र में व्याख्या की गई है, भगवान विष्णु प्रत्येक वस्तु के कारण है। जन्मादस्यतः चूंकि ब्रह्मा का जन्म सीधे भगवान विष्णु से हुआ था, अतः वे आत्मयोनि कहलाते हैं, उन्हें भगवान भी कहा जाता है। यद्यपि सामान्य रूप से भगवान से विष्णु या श्री कृष्ण का बोध होता है, कभी कभी ब्रह्मा नारद या शिव जैसी महान विभूतियों को भी भगवान कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवान का कार्य करते हैं। ब्रह्मा को इसलिए भगवान कहा जाता है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के गौण सृष्टा हैं। वे सदैव इस विचार में रहते हैं कि इस भौतिक जगत में भोग हेतु आई बद्ध जीवात्माओं को किस प्रकार उन्नत किया जाए, इसीलिए वे ब्रह्मांड भर में प्रत्येक प्राणी के मार्गदर्शन हेतु वैदिक ज्ञान को प्रसारित करते हैं। वैदिक ज्ञान के दो विभाग किए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग इंद्रिय सुख के बहिष्कार का मार्ग है, जबकि प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिससे जीवात्माएं सुख उपभोग का अवसर दिए जाने के साथ ही इस प्रकार निर्देशित की जाती है कि वे भगवान के धाम को वापस जा सके। चूंकि ब्रह्मांड पर राज्य करना एक महान उत्तरदायित्व है, अतः विभिन्न युगों में ब्रह्मा अनेक मनुओं को सृष्टि भार उठाने के लिए बाध्य करते रहते हैं। प्रत्येक मनु के अधीन अनेक राजा रहते हैं जो ब्रह्मा के कार्य को संपादित करते हैं। पिछले विवरण से यह समझा जा सकता है कि ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद ने विश्व का शासन इसलिए संभाला क्योंकि उनके बड़े भाई प्रियव्रत जीवन के आरंभ से ही तप कर रहे थे। इस प्रकार प्रचेताओं तक ब्रह्मांड के राजा उत्तानपाद के वंशज ही रहे। चूंकि प्रचेताओं के पश्चात कोई उपयुक्त राजा नहीं हुआ, अतः स्वयंभुव मनु गंधमादन पर्वत से अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत को वापस लाने पहुँचे, जहाँ वे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने प्रियव्रत से विश्व का शासन संभालने के लिए प्रार्थना की, किंतु जब उन्होंने मना कर दिया तो प्रियव्रत को मनाने के लिए सत्यलोक से ब्रह्मा जी नीचे उतरे। ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए थे, उनके साथ मरीचि, आत्रेय तथा वशिष्ठ जैसे अन्य मुनि भी थे। वे अपने साथ अपने स्थाई साथी साक्षात वेदों को भी लेते आए, जिससे प्रियव्रत को विश्वास हो सके कि वैदिक आज्ञा का पालन करना तथा विश्व शासन का भार संभालना उनके लिए अनिवार्य था। इस श्लोक में स्वभवनात् शब्द महत्वपूर्ण है, जिससे यह सूचित होता है कि ब्रह्मा जी अपने धाम से उतरे। प्रत्येक देवता का अपना धाम है। देवताओं के राजा इंद्र, चंद्रलोक के स्वामी चंद्र तथा सूर्य ग्रह के प्रमुख श्री विग्रह सूर्य के अपने अपने धाम हैं। देवताओं की संख्या कई लाख है और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रह उनके धाम स्वरूप है। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में मिलती है। यान्ति देवव्रता देवा, जो देवताओं की उपासना करते हैं वे उनके लोकों को जाते हैं। ब्रह्मा जी का धाम सर्वोच्च लोक, सत्यलोक अथवा कभी कभी ब्रह्मलोक कहलाता है। सामान्य रूप से ब्रह्मलोक वैकुंठ जगत का सूचक है और ब्रह्मा का धाम सत्यलोक है, किंतु वहाँ पर ब्रह्मा के निवास करने के कारण कभी कभी इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो हम सभी उपस्थित भक्तों का
आशीर्वाद की कामना करते हैं, जो भक्त मंदिर हॉल में हैं, जो भक्त FM पे सुन रहे हैं, या जो भक्त शायद ऑनलाइन भी इस भागवतम कक्षा में सहभाग ले रहे हैं। तो हमने इसका एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, जो सभी ब्रह्मचारियों को ईमेल से PDF फाइल में ईमेल किया गया है। तो अगर ब्रह्मचारी भक्त चाहते हैं तो वे इस PPT का भी उपयोग कर सकते हैं। ये PDF फाइल में आपको ईमेल में आया है, तो आपको ये PPT फाइल नहीं रहेगा, PDF फाइल रहेगा। तो इस तात्पर्य में एक वाक्य मुझे बहुत प्रेरणादायक लगा। हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है, अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा की गई है, मगर मुझे एक वाक्य बहुत प्रेरणादायक लगा। और ऐसा मेरा जो भी लिमिटेड बुद्धि है, उस बुद्धि से प्रयास करेंगे कि यह एक वाक्य अगर हम समझ सकें तो शायद यह पूरा तात्पर्य हमें समझने के लिए लाभदायक होगा। वो ये है कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कभी ब्रह्मा, नारद या शिव जैसी महान विभूतियों को भी भगवान कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवान का कार्य करते हैं। हम प्रयास करेंगे ये समझने के लिए कि कैसे हम हमारे जीवन में भगवान का कार्य करना समझ सकें और उसको अपने जीवन में उतार सकें। तो कुछ जो कुछ हमने परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज, इन्होंने जो शुद्ध भक्ति चिंतामणि ये ग्रंथ लिखा है, इसमें से कुछ विषयों के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ अगर समय पर्याप्त होगा तो प्रवचन के अंत में रामायण से भी कुछ एक प्रसंग लेने का प्रयास करेंगे, जो हमें इस विषय के ऊपर मार्गदर्शन करता है। परम पूज्य भक्तिचारु स्वामी महाराज, इनका अगर आपने कभी भी कोई प्रवचन सुना है, जो खास करके उन्होंने बहुत बड़े भक्तों के समुदाय के लिए दिया है, तो आपने ये अनुभव किया होगा कि एक महत्वपूर्ण बात वो अपने हर प्रवचन में कहते हैं। और वे कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे 3 आदेश दिए। वे कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी मुझे बोले कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए आप ऐसा कीजिए, आपका यह एक जीवन भगवान कृष्ण के लिए समर्पित कर दीजिए। दूसरा कहते हैं कि आपके पूरे जीवन में कभी भी इस्कॉन संस्था का त्याग मत कीजिए। और तीसरा कहते हैं कि आप हमेशा जो इस्कॉन संस्था की गवर्निंग बॉडी कमीशन है, GBC, उनको पालन कीजिए और उनका सहयोग कीजिए। जैसे हम सभी को पता है, श्रील प्रभुपाद जी का वो बहुत प्रसिद्ध इच्छा कि वे कहते हैं, आप अगर मुझसे प्रेम कर रहे हैं तो वो प्रेम आप कैसा प्रकट कर सकते हैं, आपस में सहयोग करते हुए। तो क्योंकि यहाँ पर तात्पर्य में भगवान के कार्य को प्रमुख रखते हुए जब ब्रह्मा, नारद या शिव कार्य करते हैं तो उन्हें भी भगवान कहा जाता है, तो हमें तो भगवान और भगवान की भक्ति देने वाले श्रील प्रभुपाद जी हैं, जो हमारी इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, और उनकी हम में से हर एक से यही इच्छा है कि हम हमेशा भक्तों के संग में सहयोगपूर्ण किस प्रकार से रहे। तो मैं सोचा कि इस विषय के ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज एक नव साधक के लिए बताते हैं 2 महत्वपूर्ण तत्व। ये कहते हैं, अगर ये 2 महत्वपूर्ण तत्वों को अगर कोई साधक भक्त अपने जीवन में उतार ले तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। वो कहते हैं सबसे पहला तत्व है वो है अपने जो अधिकारी भक्त हैं जो हमें सेवा में नियुक्त करते हैं वो मंदिर के अधिकारी भक्तों को पालन करना है। उन्होंने जो भी आदेश उपदेश दिए हैं उसको बड़ी सम्मानता के साथ बड़ी नम्रता के साथ कैंकर्य भाव से, कैंकर्य ये शब्द किंकर इस शब्द से आता है और किंकर इस शब्द का अगर आप संस्कृत थोड़ा जानते हैं तो किम यानी क्या और कर यानी मैं क्या करूं। तो एक भक्त जब तक भक्तों के समाज में किंकर भाव को विकसित करेगा तो उसमें अपने निजी आध्यात्मिक जीवन में 100% वो प्रगति करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसको वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि वे कहते हैं इस पूरी सृष्टि के भी एक अधिकारी है और ये पूरी सृष्टि के अधिकारी कौन है? कृष्ण भगवान, स्वयं कृष्ण भगवान सृष्टि के अधिकारी हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति अधिकारी भक्तों को आदर सम्मान और सेवा के साथ अपना दृष्टिकोण रखेगा, उनके साथ सेवा करेगा, तो निश्चित वो भक्ति में प्रगति करने वाला है इस प्रकार से। और दूसरा तत्व वो और एक उसके लिए वो प्रमाण देते हैं कि नहीं, अगर आप कोर्ट में जाते हैं और कोई लॉयर या वकील कुछ तत्व बता देता है तो अगर उसके साथ उदाहरण नहीं है तो उस तत्व को लोग स्वीकारते नहीं है कि नहीं। तो इसके लिए एक जीता जागता उदाहरण परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज कहते हैं कि विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो प्रचार हुआ है, जो अनगिनत मात्रा में बढ़ी जा रहा है, वे कहते उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि भारतीय संस्कृति में जो अधिकारी लोग हैं उनको आदर सेवा और उनके साथ सहकार्य करने की एक संस्कृति आई हुई है इस प्रकार से। दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज कहते हैं कि जो भक्तों के संग में हम रह रहे हैं, जो भक्तों के साथ हम रह रहे हैं, वो भक्तों को हमने हृदय से गुणगान करना चाहिए। ठीक है, हृदय से गुणगान करना चाहिए। जब हम भक्तों का हृदय से गुणगान करेंगे तो हमें भक्ति के सारे गुण, सारा यश भगवान निश्चित रूप से देंगे। तो अभी हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भक्तों का गुणगान करें तो कौन से भक्तों का गुणगान करना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान करना चाहिए, अपने स्वयं के गुरु का गुणगान करना चाहिए, या हमारे शिक्षा गुरु का गुणगान करना चाहिए? किसका गुणगान करना चाहिए, है कि नहीं? तो शुद्ध भक्त चिंतामणि में बहुत अच्छी तरह से श्रील शिवराम स्वामी महाराज कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों को बड़े तर्क के साथ सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि भक्ति इतनी कृपालु है, जो भक्ति देवी है उनके हृदय में इतनी करुणा है कि वो अपने आप बद्ध जीवों को प्रकट हो जाती है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि अगर भक्ति इतनी कृपालु है कि अपने आप बद्ध जीवों को लिए वे प्रकट हो जाती है तो ये कैसा समझे? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसे माधुर्य कादंबिनी में बहुत अच्छे से विस्तार करते हैं। वे कहते हैं कि यहां पर इस भौतिक संसार में कुछ भक्त है जिनके हृदय में उन्होंने अपने हृदय के सिंहासन के ऊपर भक्ति देवी को विराजित कर रखा है और क्योंकि भक्ति ने उनके हृदय में प्रवेश किया है तो भक्ति ये ऐसे शुद्ध भक्तों को शांत नहीं रहने देती, उनको प्रेरणा देती रहती है। क्या प्रेरणा देती रहती है? कि आपके हृदय में जो शुद्ध भक्ति है वो बद्ध जीवों को दो। और उसको फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रमाणित भी करते हैं। वो है प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, सप्तम स्कंध के 9वें अध्याय के 44वें श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रायेण देव मुनय स्वमुक्ति कामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। मैंने नोट्स इंग्लिश में बनाए हैं तो थोड़ा इंग्लिश हिंदी इस प्रकार से हमारा चर्चा होगा। वे कहते हैं, माय डियर लॉर्ड नरसिम्हा देव, आई सी दैट देयर आर मेनी सेंटली पर्सन्स इंडीड, बट दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन देयर ओन डिलीवरेंस। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नरसिंहदेव भगवान, मैं कितने सारे मुक्त जीवात्माओं को इधर देख रहा हूं, साधु है, मुक्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य है, मगर वो सिर्फ अपना ही कल्याण करना चाहते हैं। नॉट केयरिंग फॉर द बिग सिटीज एंड टाउन्स, दे गो टू द हिमालयाज और द फॉरेस्ट टू मेडिटेट विथ वाउज ऑफ साइलेंस। ऐसे लोग शहरों का त्याग कर देते हैं, गांवों का त्याग कर देते हैं, वनों में जंगलों में चले जाते हैं और मौन व्रत का धारण करते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिलीवरिंग अदर्स, उनको दूसरों के उद्धार का कुछ लेना देना नहीं है। मगर अब जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं बहुत अच्छा है। कहते हैं, नैतान विहाय कृपणान विमुक्ष एको नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोऽनुपश्ये। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं अपने आप का केवल उद्धार करने से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और ये गरीब मूर्ख लोगों को इसी भव संसार में फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में दुखी नहीं देख सकता। मुझे पता है, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय, श्री श्री गौरनिताय श्रील प्रभुपाद की। मुझे पता है कि आपके चरण कमलों की आश्रय लेने बिना कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं ये सब मूर्ख लोगों को आपके चरण कमलों में अवश्य लेके आऊंगा। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भक्ति देवी जब किसी के हृदय में प्रकट होती है तो भक्ति देवी उस भक्त के हृदय में करुणा भी प्रकट करती है। अभी हम देखेंगे, ये भक्ति देवी तो हमारे हृदय में इस प्रकार से करुणा को प्रकट कर रही है शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा के कारण। इसी का एक जीता जागता दूसरा उदाहरण है, वो है परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज कहते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में जितने भी सारे आचार्य हुए, और हमारे लिए सबसे मुख्य है इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद, इन्होंने ये जो सुबह का साधना कार्यक्रम रखा है उसमें क्या क्या नहीं है, मंगल आरती है, नरसिंह आरती है, तुलसी आरती है, जपा है, गुरु पूजा है, और अंततः गत्वा श्रीमद् भागवतम कक्षा है। तो वो कहते क्या आवश्यकता है इतने सारे अलग अलग विधि विधानों का, इतनी सारी आरतियों का, और इतना सुबह 4:30 से लेकर लगभग 9 बजे तक सब लोगों को साथ में रहना है, किस लिए है ये? तो वे कहते हैं केवल एक उद्देश्य के लिए, कि हर एक भक्त जो इस प्रातःकालीन आध्यात्मिक सत्संग में भाग लेता है उसके हृदय में ये इच्छा आ जाए कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। बस अगर इतना वो भक्त समझ जाए तो हमारे प्रातःकालीन कार्यक्रम यशस्वी है। और इसी को चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मती, इसी मध्य लीला 8वां अध्याय 70वां श्लोक है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मती क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम जन्म कोटीर सुकृतेर न लभ्यते। कहते हैं ये जो कृष्ण भक्ति का धन है, ये जो रत्न है, ये प्राप्त करने के लिए हमने बहुत लालची होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम का रत्न अवश्य मिलना चाहिए। और वहां पर वर्णन आता है कि चाहे किसी ने करोड़ों जन्म भी बिता लिए हो मगर उसे आवश्यक नहीं है कि ये रत्न मिलेगा। इसलिए ये लौल्य हमें हमारे जीवन में इसे विकसित करना पड़ेगा। और इसके लिए भी प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना से हमें बताते हैं कि कौन है वो लोग जो हमें ये लौल्य देंगे। सातवें स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में वो कहते हैं नरसिंहदेव भगवान को, सोहम प्रियस्य सुहृद प्रिय देवताया लीला कथास्तव नरसिंह विरिंच गीता अंजस्ति तर्म्यान गृणन गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संग। वो कहते हैं मेरे प्रिय नरसिंहदेव, आपकी दिव्य प्रेममयी भक्ति में मैं जब लगूंगा, आपके नित्य सिद्ध नित्य मुक्त शुद्ध भक्तों के संग में, तो क्या होगा, मैं मेरे तीनों गुणों का जो प्रभाव मेरे ऊपर मंडरा रहा है उस तीनों गुणों के प्रभाव से पूरी तरह से विमुक्त हो जाऊंगा। और वो कहते हैं केवल आप ही के गुणों का लीलाओं का गुण कथा करूंगा जो मुझे बहुत प्रिय है। अगर ये गुण कथा मैं कैसा वर्णन करूंगा, जिस प्रकार से मुझे गुरु शिष्य परंपरा में जो ब्रह्मा जी से आ रही है उनकी गुरु शिष्य परंपरा में उसका प्रामाणिकता से मैं पालन करूंगा। और इस प्रकार से इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं अंधकार का जो समुद्र है सागर है उसको बड़ी आसानी से लांघ सकूंगा। अभी हमारे हृदय में प्रश्न आ सकता है प्रहलाद महाराज की क्या बात है, उनके गुरु तो नारद मुनि हैं कि नहीं, जिनके गुरु ही नारद मुनि हैं इस व्यक्ति के लिए क्या समस्या है। मगर हमारा इस्कॉन में अनुभव रहता है कि हमारी दीक्षा तो हो जाती है और शायद हमारे पूरे जीवन में हमारे गुरु महाराज केवल एक ही बार हमसे आंख में आंख डलकर बात करते हैं और वो कहते कि आपका नाम ये होगा, है कि नहीं, फिर पता नहीं कभी वो देखेंगे पूछेंगे है कि नहीं, आप कहाँ रहते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी भक्ति कैसी चल रही है कि नहीं। इस प्रकार से तो प्रश्न उठ सकता है कि हमारे लिए क्या आशा है। तो इसके लिए परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज बहुत अच्छा संदर्भ देते हैं। शुद्ध भक्ति चिंतामणि के पहले अध्याय में ही वे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस विषय में क्या बताते हैं इसके बारे में बताते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जितनी प्रगति हर एक भक्त ने अपने भक्तिमय जीवन में की है उतना ही वो परिवर्तन दूसरे के जीवन में लाता है। तो वो कहते हैं अगर कोई भक्त ने अगर प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली है तो वो जो प्रेम भक्ति प्राप्त किया हुआ जो भक्त है उसमें क्या क्षमता है। प्रेम भक्ति प्राप्त किया हुआ भक्त जिसे भी देखेगा है कि नहीं, जिसके ऊपर उसकी कृपा दृष्टि पड़ गई और उसके मन में इच्छा हो गई कि बस इसे हमें शुद्ध भक्ति देनी है, बस उसके इच्छा मात्र से सामने वाला शुद्ध भक्त बन जाता है। आशा करते हैं हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि पड़ जाए, है कि नहीं, इतने सालों से साधना भक्ति में लगे हैं मगर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली अभी भी दूर है कि नहीं। तो वे कहते हैं जो शुद्ध भक्त है भगवान के वो केवल अपने कृपा कटाक्ष से किसी भी भक्त को, भक्त भी नहीं अभक्त को, नास्तिक को, पापी को शुद्ध भक्ति दे सकता है, सिर्फ उनकी इच्छा होनी चाहिए। दूसरा है जो भक्त भाव के स्तर पर है वो क्या करते हैं। जो भक्त भाव के स्तर पर है वो दूसरे भक्तों को भी भाव स्तर पर लेके आ सकते हैं अपने प्रेरणा मात्र से। और दूसरे हैं जो अभक्त है, जो अभक्त है उनको वो रुचि तक लेके जा सकते हैं। जिसको भक्त का गंध ही नहीं है ऐसे भक्तों को भी भाव भक्ति में स्थित भक्त रुचि के स्तर पे लेके जा सकता है। और तीसरा वे बताते हैं जो भक्त गंभीरता से साधना भक्ति में लगे हुए हैं, जो अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे भक्त अगर कोई भक्ति में लगा भी नहीं है, अपनी प्रामाणिक श्रद्धा जो अपने भक्ति में उन्होंने विकसित की है, वो प्रामाणिक श्रद्धा वो अभक्तों को देख सकते हैं। और हम सबके लिए अगर कोई भी दूसरी आशा नहीं रहती तो ये बहुत बड़ी आशा है कि हम जो भक्तों के संग में रहते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। शायद कोई भक्त खुद नहीं बोलेगा या हम किसी को बोल नहीं सकते कि आप परमहंस हैं कि नहीं। शायद हमें थोड़ा ईर्ष्या भाव है या हमें थोड़ा डाउट है, मगर इसमें तो कोई संदेह नहीं कि कम से कम हमारे जितना या हमसे थोड़ा बढ़कर हमारे आजू बाजू में कुछ भक्त रहते हैं। और यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे भक्त भी उनके प्रेरणा से हमें जितनी श्रद्धा उनके हृदय में है उतनी श्रद्धा हमें दे सकते हैं। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि एक भक्त के लिए उसने भक्तिमय जीवन में तीन स्तर पर संग करना चाहिए, और वे तीन स्तर कौन से हैं? एक है कि वरिष्ठ भक्तों का संग, दूसरा है अपने सम यानी क्या बोलेंगे समान स्तर के जो भक्त हैं उनके साथ किया गया संग, और जो हमसे छोटे हैं या जो हमसे बाद में आए हैं भक्ति में उनका संग। ये कैसा करना चाहिए? 20% वरिष्ठ भक्तों का, 60% हमारे समस्त स्तर के, और 20% जो हमसे बाद आए हैं, हमारे बाद आए हैं, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पे सिद्ध होता है कि इसमें भी परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि हमें सबसे ज्यादा संग जो हमारे स्तर पे है भक्त उनके साथ करना है। और आज इस्कॉन की संस्था इस प्रकार से प्रचार प्रसार बढ़ रहा है कि यही हमारे पास उपलब्ध है, तो उसका पूरा पूरा लाभ हम ले सकते हैं। दूसरा लाभ ये है कि हमारे समान स्तर के भक्त हमें सुधार सकते हैं। शायद हमसे जो बड़े भक्त है वो हमें सुधारने का प्रयास करे और हम अगर उसे ईर्ष्या के भाव में ले ले तो हम भक्ति से दूर चले जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादातर हमसे जो बड़े भक्त रहते हैं वो करुणा ही रखते हैं। उनको पता है कि ईर्ष्या का अगर इसके हृदय में उदय हो गया तो जो कर रहा है वो भी नहीं करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए एक भक्त के लिए बहुत अच्छा है कि समस्त स्तर के जो भक्त हैं उनके साथ बड़ा अच्छे से संग करें। तो ये जो तीन महत्वपूर्ण वस्तुएं हमने यहाँ पर बताई, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनका ग्रंथ है श्री चैतन्य शिक्षामृत उसके 5वें अध्याय में बताते हैं। फिर अगर हमें हमारे साथ रहने वाले भक्तों के साथ अच्छे से संग करना है और उनके साथ आदान प्रदान करना है तो कैसा कैसा कर सकते हैं? रूप गोस्वामी कहते हैं, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। ये सब तो आपको पता ही है, शायद आप में से कितने सारे भक्ति लोगों को सिखा भी रहे होंगे भक्ति शास्त्र में, है कि नहीं। यहाँ पर परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण महाराज एक बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, जब कोई भक्त हमें कुछ उपहार दे जो उपहार हमें जरूरी नहीं है, ठीक है, मान लो किसी ने आपको श्रीमद् भागवतम का संच देने की इच्छा की तो हम बोलेंगे अरे ये तो मुझे, मैं कहाँ रखूँ, मेरे पास पहले से ही है। या कोई बोलेगा प्रभु जी आप एक मृदंग ले लो, या कोई बोलेगा कि आप एक करताल ले लो, तो हमारे पास होगा तो हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण महाराज बोलते हैं ऐसा कभी मत कीजिए। वे कहते हैं अगर कोई बड़े प्रेम से आपको कुछ उपहार दे रहा है तो उसमें आप उस वस्तु को मत देखिए, उसमें उस भक्त के हृदय में आपके लिए जो प्रेम है उसको देखिए, और आप उसके प्रेम को स्वीकार करना है। और उसके प्रेम को अगर आपको स्वीकार करना है तो जो प्रेम का साधन प्रकट हो रहा है उसे भी स्वीकार करना चाहिए। तो ये है दासानुदास भाव, कि शायद कुछ उपहार ऐसा हो चाहे हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हमारा उसके साथ इतना गहरा संबंध नहीं है, अगर गहरा संबंध है तो ठीक है, आप बोल सकते हैं प्रभु जी आप अगर उपहार देना ही चाहते हैं तो थोड़ा मुझे पहले पूछिए, मगर नहीं है वैसा संबंध तो उसका विचार मत कीजिए। केवल उस भक्त का प्रेम उस साधन से प्रकट हो रहा है, कृपा करके उस साधन को स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि कुछ वर्ष पहले जब हम मायापुर में कुछ सेवा के लिए थे तो हमने एक विशेष पेढ़ा बनाया था। वहाँ पे एक लॉस एंजलिस के भक्त थे जगन्नाथपुरी प्रभु, तो उनके मार्गदर्शन में हमने पेढ़ा बनाया था। उसके लिए खास कलकत्ता का ओरिजिनल ऑर्गेनिक वैनिला, ये जो बीन रहता है कि नहीं, वो बीन लाया था ओरिजिनल, उससे पेड़ा बनाया था। और वो भक्त की मार्गदर्शन में और भक्तों की कृपा से वो पेड़ा बहुत अच्छा हो गया था। जो भक्तों ने खाया सब लोग खुश हो गए, और कुछ भक्तों ने हमें प्रेरणा दिया कि आप ये एक पेड़ा परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण महाराज को दीजिए। और हमें वो अवसर मिला कि हम वो सेवा महाराज जी का कर पाए, और शायद उसी का कुछ कृपा है कि महाराज जी के कुछ उपदेश हमें हमारे जीवन में इतना प्रेरणा और आश्रय का अनुभूति दे रहे हैं। एक प्रसंग है बेलगांव का। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक सत्संग कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे, और उसके पश्चात वो एक गृहस्थ भक्त के घर में आकर खिचड़ी प्रसाद लेने वाले थे, फिर वहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम करने वाले थे। मगर हुआ ऐसे कि वो सत्संग प्रोग्राम को बहुत विलंब हो गया। जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वो प्रभु जी के घर में आए तो माता जी बोले, महाराज आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है। महाराज बोले, मैं इतना थक गया हूँ कि अभी मैं कुछ प्रसाद नहीं खा सकता, कृपा करके मुझे एक कमरे की व्यवस्था कीजिए, मैं केवल थोड़े समय के लिए विश्राम करूँगा, फिर वहाँ से चला जाऊँगा। जैसे ही परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ऐसा बोले, वो माता जी के आँखों में से नयनम गलद अश्रु धारया शुरू हो गया। बोलने लगे, महाराज मैंने कितने कष्ट से आपके लिए ये खिचड़ी बनाया है, इसमें क्या क्या व्यंजन नहीं डाला है, क्या क्या छोक नहीं लगाया है, पूरा जितना कुछ इतने वर्षों में जो भी कुछ कृष्ण प्रेम होगा सबको सब इसमें ही डाला है, और आप कह रहे हैं कि इसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। तब परम पूज्य राधानाथ महाराज थोड़े गंभीर हो गए और वे बोले, जैसे आपने ये खिचड़ी मेरे लिए बड़े प्रेम से बनाई है, उसी प्रकार जो भी मैं प्रवचन देता हूँ वो प्रवचन मैं बड़े मेहनत से, बड़े प्रेम से, बड़े सेवा भाव के साथ भक्त उसे सुने और उसका लाभ प्राप्त करके भक्ति में प्रगति करे, इसके लिए बनाता हूँ। मगर जब मैं प्रवचन देता हूँ तब आप प्रवचन में सोते हैं, तब मुझे कितना दुख होता होगा। इसलिए बड़ा आवश्यक है कि हमारे गुरु वृंद भी बड़े नम्र हैं कि हालांकि वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं मगर वे भी प्रेम का आदान प्रदान हम सबसे करना चाहते हैं। इससे हम सीख सकते हैं कि ये प्रेम के आदान प्रदान के संबंध कितने हमारे भक्ति में जीवन में महत्वपूर्ण हैं। हमारे जीवन में हम एक चीज़ तो कर सकते हैं कि हम जितने सारे भक्त जिनके साथ हम रहते हैं, खास करके मंदिर के निवासी भक्तों के लिए ये कह रहा हूँ मैं, और आपके लिए उपदेश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप में से एक निवासी हूँ, तो मैं मेरे लिए ही बता रहा हूँ कि मैं प्रयास तो करना चाहता हूँ कि जितने सारे भक्त भागवतम क्लास या ब्रह्मचारी क्लास देते हैं वो पूरा क्लास मैं सुनने का प्रयास करूँ, और वो भक्त को क्लास होने के बाद हृदय से, प्रामाणिकता से कुछ एक उसमें से जो उपदेश मुझे प्रेरणादायक लगा वो उसे बताऊं, जिसके द्वारा मैं अपने हृदय में जो भक्तों के साथ मैं रह रहा हूं उनके प्रति आदर और सम्मान का गुण विकसित करूं। शुद्ध भक्ति चिंतामणि में ये कुछ छह उपदेश है जो शिवराम महाराज बड़े महत्व से यहां पर जोर देके कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं केवल ये उपदेश बताऊंगा और उसके बाद प्रयास करेंगे रामायण से एक प्रसंग लेने के लिए। ये शिवराम स्वामी महाराज 16वें अध्याय में बताते हैं। वे कहते हैं कि ये इस पूरी तरह से सत्य है कि एक नवसीखा भक्त जो है उसकी भक्ति में परिस्थिति बड़ी डामाडोल रहती है, कभी भी उसका भक्ति में जीवन से पतन हो सकता है। अगर वे कहते हैं उनका पतन उसी समय होगा जब वो भक्तों का संग नहीं करेंगे, और फिर ये ऐसा उपदेश है, मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा जिसका रस इंग्लिश में अच्छा आएगा। वे कहते हैं, दे रिस्क फॉलिंग डाउन व्हेन दे मिक्स विद द डिवोटीज. कहते हैं दे रिस्क फॉलिंग डाउन व्हेन दे मिक्स विद द डिवोटीज. इसका अर्थ क्या है? जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्ति का पतन भी संकट में आ जाएगा. यानी क्या? जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्ति में कभी हमारा पतन नहीं होगा. दूसरा वे कहते हैं साधु संग के बिना हम भक्ति में प्रगति कर ही नहीं सकते, और इसीलिए नवसिख्या भक्तों के लिए बड़ा आवश्यक है कि अपने वरिष्ठ भक्तों के संग में हमेशा रहे. तीसरा मुद्दा वे कहते हैं कि भक्तों के लिए, नवसिख्या भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने जीवन में कृतज्ञता रखे, कृतज्ञता ना रखे. तो हम जब यहां पे नवसिख्या भक्त कह रहे हैं, ऐसा मत सोचिए नवसिख्या भक्त यानी जिसका दीक्षा नहीं हुआ है, जिसका भक्ति में 10 ही साल हुआ है या जिसका भक्ति में 20 ही साल हुआ है. शायद जब तक हम प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा को पूरे शुद्ध चित्त से पालन नहीं करेंगे तब तक शायद हम में से हर एक नवसिख्या ही भक्त है कि नहीं. अच्छा है कि हम अपने आप को हमेशा नवसिख्या भक्त समझते हुए ये प्रेरणादायक उपदेश हमारे जीवन में स्वीकारें. वे कहते हैं ऐसे भक्तों में जो उनका रिबिलियस नेचर है यानी विद्रोह करने का जो स्वभाव है उसको नियंत्रण करना चाहिए, और कब? जब वो करना भी बहुत मुश्किल हो और भक्तों के संग में ही रहना चाहिए. तो नॉर्मल सिचुएशन में तो शायद ठीक है, हम सहकार्य कर लेंगे, मगर जब हमारा कोई अनर्थ के ऊपर कोई ठेस पहुंचता है तो विद्रोह की आग, विद्रोह का ज्वालामुखी अंदर से आता है कि नहीं? आपने मुझे क्या समझ के रखा है? मैं तो बड़ा प्रामाणिक हूं, आप मेरे ऊपर कैसा संदेह कर सकते हैं? इतने सारे नियम मेरे ऊपर क्यों लागू कर रहे हैं? जब विद्रोह का भूत अंदर से नाचने लगता है उसको अंदर ही शांत करना है और भक्तों के संग में ही रहना है. फिर वे कहते हैं अपने साधना भक्ति के भरकस प्रयास से जब हम शक्ति प्राप्त करेंगे और उसमें भी विशेष है हरे कृष्ण महामंत्र का जप भक्तों के संग में जब हम करेंगे उसके साथ साथ नवसिख्या भक्त ने सहनशीलता बढ़ानी पड़ेगी और विशेष करके उस उनके जीवन में एक असुविधा आएगी. और यह असुविधा कहां से आती है बड़ा ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए. वे कहते हैं उनके जीवन में असुविधा आती है कब? जब वो अन्य भक्तों के प्रति अपराध करते हैं और अपने ही अपराधों के कारण उनके चित्त में ये विचार आता है कि भक्ति करना मुश्किल है, भक्तों के संग में रहना मुश्किल है, मुझे सहन करना अभी बहुत, ये तो लिमिट हो गया है कि नहीं, अभी हम भक्तों के संग में रहना हमारे लिए बहुत संकटमय हो गया है. ये जो कुछ विचार अगर अपने चित्त में आते हैं एक साधक भक्त के रूप में, श्रील शिवराम गोस्वामी महाराज कहते हैं कि वो केवल हमारे चित्त में जो अपराध भावना है उसी से ये भावनाओं को जन्म मिलता है. फिर वे कहते हैं इस प्रकार जब भक्त डटकर भक्ति में रहेंगे तो समय के प्रभाव के साथ साथ उनका जो निचला स्वभाव है उसके ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेंगे और वो मध्यम भक्त के स्तर पर उठ जाएंगे. तो ये बड़ा आशा हम सबके लिए है. आने वाले कुछ 5-10 मिनट में, हालांकि हमारे पास केवल 2-3 ही मिनट है, तो हम प्रयास करेंगे एक ऐसा ही लीला का वर्णन सुनने के लिए जहां पे क्या सीखने को मिल रहा है ये हम लीला सुनने के बाद कहेंगे. नहीं तो क्या है, कुछ भी हम हमारे मन में पहले उसका तैयारी करके रखेंगे तो वो जो लीला का स्वाद है शायद हम नहीं ले पाएंगे. तो ये प्रसंग आता है बाल कांड में. अभी प्रभु रामचंद्र जी का विवाह हो गया है, दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न हैं, ठीक है, वो मिथिला नरेश जनक महाराज को बड़े प्रेम से मिले हैं, जनक महाराज ने उनको बहुत सारे उपहार दिए हैं और अभी वो अपने अयोध्या नगरी के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ, ब्रह्मर्षियों के साथ, ऋषियों के साथ, ऋत्विजों के साथ, बड़े धूमधाम से पूरा उनका, क्या कहेंगे, पूरा जो प्रजा है वो अयोध्या नगरी के तरफ जा रहा है और अचानक भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगते हैं और कुछ मृग जो है वो मृग ये सारी प्रजा को अपने दाहिने ओर में रखते हुए भागने लगते हैं। और दशरथ महाराज को बड़ा भय होता है, वो पूछने लगते हैं वशिष्ठ ऋषि को कि गुरुदेव इस प्रकार का कैसे ये प्रसंग हमारे सामने खड़ा हो गया कि दो प्रसंग है, एक है अपशकुन है, भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहा रहे हैं और उसी समय शुभ शकुन भी है कि मृग हमें दाहिने ओर में रख रहे हैं, तो कैसा समझे। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं महाराज चिंता मत कीजिए, कुछ तो बड़ा संकट आने वाला है मगर वो टल जाएगा। दशरथ महाराज बोलते ठीक है, वो ठीक है बोलने का ही शब्द की देर है कि बहुत जोर से आंधी उठने लगती है, सब तरफ धुआं यानी क्या कहेंगे उसे, डस्ट, जो धूल है धूल उठ जाती है, आंधी तूफान हो जाता है, सब दिशाओं में अंधकार फैल जाता है और मानो वहां पे स्वयं भगवान शिव शंकर खड़े हो, परशुराम जी अपने हाथ में परशु और धनुष, एक विशेष धनुष और बाण लेकर वहां पर प्रकट हो जाते हैं। जब परशुराम को अपने सामने खड़ा देखते हैं दशरथ महाराज तो कांपने लगते हैं। अगर आपको पता है यही परशुराम से बचने के लिए दशरथ महाराज ने सैकड़ों स्त्रियों से विवाह किया था, क्योंकि परशुराम जी का एक व्रत था कि वो सभी क्षत्रियों का हत्या तो कर रहे थे मगर कोई क्षत्रिय अगर स्त्रियों से घिरा हुआ है या विवाह कर रहा है तो उसके ऊपर वो आक्रमण नहीं करते। तो दशरथ महाराज का इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत पावरफुल था, परशुराम आने से पहले उनको व्हाट्सअप आता होगा है कि नहीं, पहले ही पूरी तैयारी कर देते थे और एक विवाह रचाते थे। मगर आज की क्या बात है, बिना नोटिस के सीधा परशुराम हाथ में परशु लेके सामने खड़े। दशरथ महाराज कांपने लगे और वो परशुराम को बोलने लगे, परशुराम जी आपने हिंसाचार का जो कार्य है अभी छोड़ दिया है, ठीक है, अभी हाल ही में आपने आपकी पूरी पृथ्वी का राज्य आपके गुरु जो है कश्यप मुनि उनको दे दिया है, तो कृपा करके अभी हिंसा का विचार मन में मत लाइए। फिर बोलते शायद आप मेरे ऊपर करुणा करेंगे मगर आपको लगेगा कि ये जो राम है ये राम आपका शत्रु है और इसकी हत्या आप करना चाहेंगे, तो सुनिए अगर इस राम का अगर हत्या हो गया तो हम में से कोई जीवित नहीं रहेगा। तो परशुराम उनके तरफ देखते भी नहीं है। परशुराम राम को बोलते बड़ी प्रसन्नता हुई आपको देख के, सुना है आपने शिव धनुष तोड़ डाला, जैसे ही शिव धनुष का समाचार मुझे मिला मैं महेंद्र पर्वत से पृथ्वी पर आ चला गया आपको मिलने के लिए। और कहते हैं ये मेरे पास जो धनुष है ये विष्णु धनुष है, जो शिव धनुष शिव जी को मिला था विष्णु के साथ युद्ध करने के लिए, जब से सभी देवी देवताओं की इच्छा थी कि देखते हैं कौन बड़े विष्णु या शिव, वो जो घमासान युद्ध में शिव धनुष और विष्णु धनुष बना था उस धनुष में से ही ये विष्णु धनुष है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि वो जो शिव धनुष है उसका पराजय हो गया था इस विष्णु धनुष के द्वारा। तो अभी आप ज्यादा विलंब मत कीजिए और एक सुंदर श्लोक भी गाते हैं, अगर आपके पास वो PDF है तो आप ये श्लोक देख सकते हैं। ये कहते हैं तदेवं वैष्णवं राम पितृ पैतामहं महत् क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमं योजयस्व धनुश्रेष्ठे शरं परपुरं जयं यदि शक्तोऽसि काकुत्स द्वन्द्वं दास्यामि ते तत। वे कहते हैं श्री राम इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पिता पितामहों के अधिकार में रहता चला आया है, अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर ऐसा एक बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो, यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। तो देखिए कितना एरोगेंस है, कितना घमंड है, इतने घमंड के साथ परशुराम जी बोल रहे हैं। रामचंद्र जी के पिताजी का तो उन्हें ख्याल ही नहीं है, अभी समय के अभाव के कारण पूरा मैं वर्णन नहीं कर सक रहा हूं मगर वो अपने पिताश्री का बड़ा गुणगान कर देते हैं कि मेरे पिताजी जमदग्नि थे और वो इतने महान थे, वो इतने तपस्वी थे और उनके पिताजी ऋषिक ऋषि थे और वो ऋषिक ऋषि को विष्णु ने ये धनुष दिया था। अपने कुल का तो बड़ा भारी गुणगान करते हैं मगर दशरथ महाराज की तरफ देखते तक नहीं। और अभी प्रभु रामचंद्र को बोल रहे हैं कि देखिए क्षत्रिय धर्म का पालन कीजिए, उसका पुरस्कार कीजिए, वो करना बड़ा आवश्यक होता है। तो ये सब प्रसंग हो रहा है, जरा सोचिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के हृदय में क्या चल रहा होगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र बड़े क्रोध में आ जाते हैं मगर वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि पता नहीं क्या मैं कौन हूं, क्योंकि ऐसा अगर अपना स्वयं का गुणगान करे तो उनके पिता श्री दशरथ महाराज पे वहां पर खड़े, अपने पिता के सामने अगर अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोलेंगे तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं बोलते, मुंह बंद करके खड़े हैं। मगर अभी तो लिमिट हो गया, अभी तो क्षत्रिय धर्म के लिए ललकारा जा रहा है। तो बड़े प्रेम से वो बोलते, आप तो ब्राह्मण हैं, आप स्वयं परशुराम हैं और अपने पिता की हत्या के लिए 21 पीढ़ियों क्षत्रियों का विनाश आपने किया, इसका तो हम बड़ा आपका सम्मान करते हैं मगर इसका अर्थ ये नहीं है का आप मेरा इतना तिरस्कार करें, ये उचित नहीं है। और फिर उनसे रहा नहीं जाता और बोलते अभी देखिए मेरा सामर्थ्य, ऐसा बोलते प्रभु रामचंद्र सीधा उनकी ओर आगे बढ़ते हैं, उनके हाथ से वो धनुष ले लेते हैं, उनके हाथ से वो बाण ले लेते हैं और धनुष के साथ साथ उनके वैष्णवी तेज को भी ले लेते हैं। उस समय अपना पूरा वीर्यहीन होने के कारण परशुराम फीके हो जाते हैं और फिर रामचंद्र उनके बोलते हैं आप तो ब्राह्मण हैं और आप हमारे गुरु विश्वामित्र से संबंध रखते हैं, इसलिए मैं आपका अपमान भी नहीं कर सकता या मैं आपकी हत्या भी नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है, चाहे तो प्रभु रामचंद्र जी उनका बाण से वध भी कर सकते थे। फिर वे कहते हैं जल्दी बताइए इससे मैं क्या करूं, दो कार्य कर सकता हूं, एक तो कर सकता हूं आपके पास जो गमन शक्ति है, जिस गमन शक्ति से कुछ ही क्षणों में आप एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते हैं उसको नाश कर लूं, या आपने देवी देवताओं के आशीर्वादों से इतनी बड़ी जो सृष्टि बनाई है उसको नाश कर लूं, बताऊं क्या करूं, क्योंकि ये धनुष और बाण है ना ये बहुत शक्तिशाली है और वो अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ता है। तो अपने मर्यादों के साथ साथ परशुराम के ईंट का जवाब पत्थर से भी दे देते हैं, अपराध भी करते नहीं हैं और अपने वीरता को भी प्रकट कर देते हैं। उसके बाद परशुराम जी बड़े खुश हो जाते हैं, भगवान को बोलते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, आप स्वयं विष्णु हैं, ये तो आपने सिद्ध ही कर लिया है, कृपा करके मेरी गमन शक्ति को आप नाश मत कीजिए, क्योंकि ये गमन शक्ति से महेंद्र पर्वत से यहाँ पर आया हूँ मैं, अगर मैं यहाँ से वापस नहीं चला जाऊँगा तो कश्यप मुनि मुझे और दूसरा कुछ श्राप दे देंगे, इसलिए मेरे गमन शक्ति का अपहरण मत कीजिए, आप मेरी देवी देवताओं के शक्तियों से द्वारा जो सृष्टि बनाई थी उसका नाश कर दीजिए। और उस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है, बड़ा सुंदर है, एक राम दूसरे राम के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। रामम दाशरथिम रामो जामदग्न्य प्रपूजित ततः प्रदक्षिणी कृत्य जगमात्म गतिम प्रभु। तदनंतर दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया, उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। तो ये है जैसे हमने तात्पर्य का वो वाक्य या उपदेश सुना था, एक पंक्ति पढ़ा था, उसी का जीता जागता उदाहरण, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आप देखिए परशुराम अपने घमंड को प्रकट कर रहे हैं, अपने क्रोध को प्रकट कर रहे हैं और इस प्रकार से वीर्यता आह्वान चुनौती दे रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी को, केवल यही प्रदर्शित करने के लिए कि चाहे कोई कैसा भी व्यवहार क्यों ना कहे, चाहे कोई कितने ही भावनाओं को ठेस क्यों ना पहुंचाए, प्रभु रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम का जो अपना उद्देश्य है वो सफल करके ही रहेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। अगर मेरे शब्दों में कुछ मर्यादा व्यतिक्रम हो गया हो तो आप कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिए। शिल्प रूपा की जय।